الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز دوستو، پیارے بچوں اور ننھے ناظرین جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، انرجی سے بھرپور دن انہوں نے گزارا ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. میں ہوں آپی، یہ ہیں غلغلی، آپ ہیں بچے، اور ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام کیا؟ غلغلی اور بچے. جی ہاں، امید کریں گے پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ بنا رہے گا. پتہ ہے غلغلی، ہمیشہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ گھر میں جب دادا ابو دادا ابی موجود ہوں، مثال کے طور پر دادی ہیں آپ کی، نانا یا نانی جو بھی ہیں، پتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں. گھر میں بزرگ افراد جب موجود ہوتے ہیں تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ محبت کے ساتھ اپنا ہاتھ ہمارے سر پر پھیرتے ہیں، شفقت بھرا ہاتھ، محبت بھرا ہاتھ، دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے، ہے نا. ایک منٹ دوستو، میرا یہ فون میرے خیال سے بج رہا ہے، دیکھوں کس کا فون ہے. جناب جی دیکھتے ہیں. ہلو، السلام علیکم غلغلی کی امی، کیسی آپ؟ جی غلغلی یہاں موجود ہیں؟ بالکل. اچھا، دادا ابو ان کی نقل؟ بالکل، میں ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی عزت و احترام ان سے تمیز سے پیش آنا چاہیے نا. میں ذرا خبر لیتی ہوں ان کی، نہیں بات کرتی ہوں میں ان سے. بالکل، خدا حافظ. غلغلی، تمہارے گھر میں تمہارے دادا ابو ہیں؟ اچھا، اور میں نے سنا ہے کہ غلغلی، خیر نقل اتارنے کے علاوہ انہوں نے تم سے پانی کا گلاس منگوایا تھا، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے کہا میں ابھی پانی کا گلاس نہیں لا سکتا، مجھے ابھی فٹ بال کھیلنا ہے، میرا فٹ بال یہ کھیل بہت ضروری ہے. غلغلی، دادا ابو کی پیاس ضروری ہے یا فٹ بال ضروری ہے، کون سا؟ تمہارے دوست تمہارا انتظار کر رہے تھے. اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک پانی کا گلاس لانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک منٹ، دو منٹ یا تین منٹ؟ دس منٹ؟ تم کیا کنویں میں سے پانی نکال رہے تھے یا تم فریج میں سے پانی نکال رہے تھے؟ فریج میں سے. ریفریجریٹر ہوگا سب کے گھر میں، وہاں سے تم پانی لے کر آ رہے تھے، تو ریفریجریٹر میں سے پانی نکالنے میں 10 منٹ لگتے ہیں. جا کر تم پانی لے کر اپنے دادا ابو کو دے سکتے تھے، 2 منٹ یا 3 منٹ لگتے ہیں. ٹھیک، دیکھو غلغلی، جب گھر میں ایک بزرگ شخص موجود ہو تو ان کی ہمیں عزت کا خیال رکھنا چاہیے. وہ ضعیف ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ اٹھ کر نہیں جا سکتے پانی لانے کے لیے، تمہیں جا کر ان کی مدد کرنی چاہیے. بلکہ غلغلی، تمہیں بار بار دادا ابو کے پاس جا کر کہنا چاہیے، دادا ابو. بولیں گے جی بیٹا. وہ دادا ابو کوئی کام ہے جو میں آپ کے لیے کر سکوں؟ دادا ابو آئیے میں آپ کی مدد کروں. تم ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں چلا سکتے ہو، تم ان کی دوائیاں ان کو دے سکتے ہو، تم پانی دے سکتے ہو، دیکھو کتنے سارے کام ہیں. لیکن غلغلی کے لیے فٹ بال زیادہ ضروری ہے، ہے نا. دوستو، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اپنے بڑے بزرگ کی خواہشات کو اپنے پاؤں تلے آپ رونتے چلے جائیں. کیوں؟ ایک پلاسٹک کے بال کے لیے اور کچھ دوستوں کے لیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دوست ضروری ہوتے ہیں زندگی میں، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا نا کہ جناب آپ جو ہے اپنے دادا ابو کی بات کو جو ہے ایسے ہی نظر انداز کر دیں، اور فٹ بال کے لیے وہ بھی. غلغلی، آئندہ سے خیال رکھنا، تمہاری امی اتنی خفا ہیں اس بات پر، اتنی خفا ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں، کچھ مطلب کیا کریں. پھر سے یہ کام مت دہرانا. لو پڑھیے اس کو دوسرے حصے کی، دیکھتے ہیں حصہ اس کا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر سے ایسا مت کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بچوں؟ آج ہم آپ کو کہانی سنائیں گے ایک غریب لڑکے کے بارے میں، لیکن وہ لڑکا بہت ہی زیادہ زوردار، زوراور اور طاقتور تھا. اب یہ جو لڑکا ہے، یہ اپنے ابا سے کہتا ہے، یعنی اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابو مجھے جو ہے نا دوسرے شہر جانا ہے، اور اس کے ذریعے سے میں جو ہے وہ اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، کمانا چاہتا ہوں. اس کے ابو نے اس سے کہا کہ دیکھو، ضروری تو نہیں ہے کہ تم دوسرے شہر جاؤ، تم اسی شہر میں رہ کر بھی یہ کام کر سکتے ہو، اپنی زندگی کا آغاز کر سکتے ہو، کما سکتے ہو یہاں رہ کر.
तो कहने लगा कि नहीं, मुझे तो बस दूसरे शहर ही जाना है, आप जो भी कहें, मुझे तो दूसरे शहर जाना है। उसके अब्बू ने उसे समझाया कि भाई देखो, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, दूसरे शहर जाने के लिए वसाइल होने चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए। तो वो लड़का कहने लगा कि आप जो भी कहें, मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, मैं अपनी ताकत के बलबूते पर जो है ना दूसरे शहर आपको जाके बताऊँगा। अब जाहिर है उसके अब्बू ने और क्या कहना था, कहा कि ठीक है, अगर तुम कर सकते हो तो तुम जाओ, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि तुम इसी शहर में रहो, या फिर तुम्हारे पास इतने असबाब हो, इतना पैसा हो कि तुम दूसरे शहर जा सको। बहरहाल वो अपने बाप की नहीं सुनता और रवाना होता है, जाता है साहिल पर, पहुंचता है और किश्ती वालों से कहता है कि भाई मुझे अपनी किश्ती में सवार कर लो। किश्ती वाले कहते हैं कि टिकट के पैसे लाओ। उसने कहा पैसे तो मेरे पास नहीं, और एक घूंसा रसीद करता है, एक लात रसीद करता है और जबरदस्ती किश्ती में सवार हो जाता है। अब किश्ती वाले भी सोचते हैं कि ये इतना जोरावर है, हमें मार पीट रहा है, अब क्या कर सकते हैं। बहरहाल उसे किश्ती में बिठा लेते हैं। किश्ती थोड़ा सा आगे जाती है तो किश्ती वाले कहते हैं कि देखो, किश्ती में ना कुछ खराबी पैदा हो गई है, हम चाहते हैं कि किसी जगह पर रोक कर किश्ती को बांध दें किनारे से, और हमें किसी मजबूत आदमी की जरूरत है, किसी ताकतवर आदमी की जो किश्ती को खींच कर बांध सके। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम ये काम करो। खुशी खुशी राजी हो जाता है। जैसे ही किश्ती किनारे पर पहुंचती है और ये किश्ती से नीचे उतरता है, वो लोग जल्दी से अपनी किश्ती भगाकर दूर ले जाते हैं। अब ये जो है वो साहिल पर, बयाबान साहिल है, कोई वहां पर ना आदम ना आदमजाद, बिल्कुल बेचारा परेशान भूखा बैठा है और सोचता है कि यार ये किश्ती वालों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, उसने भी किश्ती वालों के साथ बहुत गलत किया था। इतनी देर में उस मुल्क के बादशाह का वहां से गुजर होता है। बादशाह उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों पड़े हुए हो। वो पूरा माजरा बयान करता है। बिलाखिर बादशाह जो है वो उसे एहसास दिलाता है कि तुमने जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और बेजा इस्तेमाल किया, तुम्हें इस तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए था। बादशाह जो है वो उसे उसके शहर भिजवाने के असबाब फराहम करता है। वो लड़का अपने शहर पहुंचता है, अपने बाप को सारी दास्तान सुनाता है और कहता है कि अब्बू आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे सबक मिल गया कि अगर इंसान के पास वसाइल नहीं हो तो उसे सफर इख्तियार नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये कि हमेशा अपने अम्मी अब्बू की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ हमें कहते हैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कहते हैं। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
जी दोस्तों, खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको एक बार फिर। उम्मीद करती हूँ ये जबरदस्त सा हिस्सा आपको पसंद आया होगा। और पता है गलगली, मैं आपको एक बात याद दिलाती चलूँ कि जिस तरह मैंने पहले हिस्से में भी कहा था कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनका एहतराम वाजिब है, हमारा फर्ज है, वो घर में एक नेमत होते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ, पता है मुझे कितना पसंद है कि मेरे घर में दादा अब्बू हों और वो मेरे सर पर शफकत भर अपना हाथ फेरे, मुझे प्यार करें, मेरे लिए दुआएं करें, मुझसे बातें करें। पता है इतनी अच्छी अच्छी बातें वो करते हैं, उनके तजुर्बे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको बहुत सी चीजों में बहुत सारा तजुर्बा हासिल होता है जो हमें नहीं होता। हम उनसे बातचीत करके, उनसे कहानियां सुन के उस तजुर्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में उन चीजों को हम लागू कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं और कामयाबी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो सो एक मिनट, तुम्हारी टीचर का फोन है गलगली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गलगली की टीचर, ठीक है आप? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ जी। हाँ गलगली, यहाँ बैठे हैं? बिल्कुल। आज क्या नकल? लेकिन वो दोस्तों के सामने, क्लास में? बिल्कुल नहीं, मैं देखती हूँ जरा मैं क्या करूँ। मैं इनका, इनकी अम्मी भी इनके हाथ से परेशान है। चलिए ओके, बहुत अच्छा किया आपने इत्तला दी हमें, खुदा हाफिज़। तुम बताओगे या मैं बताऊं? साथ मिलकर बताएंगे, शुरू हो जाओ। आज मैंने क्लास में दादा अब्बू, ठीक है, उनकी नकल उतारी अपने दोस्तों के सामने और मेरे तमाम दोस्त क्लास में कह कहे लगा कर हंसे। और जी टीचर ने मुझे देख लिया। अब गलगली तुम मुझे एक बात बताओ, क्या अपने दोस्तों के सामने शो मारना ठीक है और सिर्फ उनके दिल जीतने को, उनके दिल को खुश करने के लिए तुम अपने दादा अब्बू की नकल उतारो, क्या ये दुरुस्त काम है? जब तुम्हें ये बात पता है कि ये दुरुस्त काम नहीं है तो तुमने क्यों अंजाम दिया? चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। देखो खिलखिली, किसी की नकल उतारना बिल्कुल भी नहीं ठीक। तुम्हें बिल्कुल भी इस बात की इजाजत नहीं दी गई है कि तुम किसी की नकल उतारो, तुम किसी की, बच्चे की, बड़े की, बुजुर्ग की, भाई आसपास पड़ोसी की नकल उतारो, बिल्कुल भी ठीक नहीं है खिलखिली। ये एक बुरा अमल है, एक बुरी बात है, लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। दूसरी बात, तुम्हारे दादा अब्बू इतने प्यारे हैं, इतनी मोहब्बत वाली शख्सियत है, इतने अच्छे हैं वो, और तुम्हारा दिल कैसे मारा तुम उनकी मजाक उड़ाओ? तुम अपने दोस्तों को हंसाने के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए अपने दादा अब्बू का मजाक उड़ाते हुए तुम उनकी नकल उतारो? क्या तुम्हें गवारा है ये चीज कि कोई तुम्हारे दादा अब्बू के साथ बदतमीजी करे? नहीं ना ठीक। अगर कोई बदतमीजी करेगा तो क्यों करेगा? क्योंकि तुमने सबके सामने अपने दादा अब्बू का मजाक बनाया हुआ है ठीक। उनकी नकल उतारते उतारते तुम उनका मजाक उड़ा दो तो लोग बोलेंगे ठीक है हम भी थोड़ा मजाक उड़ा लें भाई, इसमें ऐसी कौन सी बुरी बात है ना। खिलखिली इन चीजों का ख्याल रखो, बुरी बात है। इस तरह से तुम अपने दादा अब्बू की इज्जत में कोताही कर रहे हो, उनसे तुम बदतमीजी कर रहे हो, उनके शायद सामने तुम ये काम नहीं कर रहे होगे, लेकिन उनके पीठ पीछे उनकी नकल उतार के, उनका मजाक उड़ा के, उनका मजाक बना कर लोगों के सामने तुम नहायत ही बुरा और बहुत ही शर्मिंदगी वाला काम कर रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हें आइंदा ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, और अपने दोस्तों से भी कहना चाहिए कि मैं आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा ठीक। देखते हैं यहाँ पर एक हिस्सा, तो मैं इनको समझाती हूँ थोड़ा बहुत। अब तुम मुझे देखो, फिर से मत करना। खुशामदीद कहती हूँ आप सबको एक बार फिर, और उम्मीद करती हूँ ये हिस्सा भी आपको अच्छा लगा होगा। हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर हमारे घर में दादी अम्मी हैं, दादा अब्बू हैं, नाना अब्बू हैं, नाना अम्मी हैं, तो हमें बहुत बहुत ज्यादा खुशहाली की जरूरत है, क्योंकि हमारे ये अजीज बुजुर्ग जब हमारे घर में होते हैं तो हमारे घर का माहौल बहुत ही खूबसूरत होता है। उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनकी दुआएं हमारे घर के माहौल को तब्दील कर देती हैं, और यहाँ मुझे किसी का मूड जो है थोड़ा बदला लग रहा है। खिलखिली खिलखिली, क्या हुआ है? तुम्हारे दादा अब्बू ओ हॉस्पिटल में? लेकिन क्यों, क्या हुआ उन्हें? उनकी तबीयत अचानक खराब हुई? हाँ, उन्होंने मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। खिलखिली कह रहे हैं कि मेरे दादा अबू को वक्त पर एक दवाई खानी थी, क्योंकि मैंने उन्हें पानी लाकर नहीं दिया तो उस वजह से मेरे दादा अबू की तबीयत खराब और वो हॉस्पिटल में। ओह, अब तुम नाराज हो, अब तुम्हें यहाँ पर अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे दादा अबू, अब तुम यहाँ पर गमजदा बैठे हो मेरे सामने। उस वक्त जब तुम्हारे दादा अबू कहते कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, वो तुमसे बार बार दरख्वास्त कर रहे थे एक गिलास पानी की, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने कहा किया या नहीं किया, है ना। जब तुम्हारे दादा अबू ने कहा कि बेटा मेरे दवाई को मुझे इस वक्त पर खाना है, तुमने कहा मेरा फुटबॉल ज्यादा जरूरी है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार करें, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे 10 मिनट लगेंगे एक पानी का ग्लास लाने में, है ना। तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, प्रोग्राम के इस हिस्से के बाद तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती, तुम्हारे दादा अबू हैं, उनमें जाना जरूरी है वहां पर। लेकिन गलगली तुम मेरी एक बात सुनो, जब तुम्हारे दादा अबू तुम उनका स्कूल में मजाक उड़ाकर अपने दोस्तों को हंसा रहे थे, तो उस वक्त तुम्हारी शक्ल ऐसे क्यों नहीं बनी। अब तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर डांटूंगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि तुमने कितना गलत काम किया है, अपने दादा अबू को वक्त पर पानी का गिलास ना पहुंचाकर तुमने उनकी सेहत के साथ क्या किया। ठीक है गलगली, चलो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करना, ऐसा कोई कदम ही ना उठाओ जिससे हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे खफा हों, जिससे हमारे बड़े बुजुर्ग की जान जो है या उनका जो अब सेहत वगैरह का जो मसला है, उन्हें कोई ऐसा मसाइल का सामना, ऐसे मसाइल का सामना करना पड़े जिससे उन्हें हॉस्पिटल का रुख करना पड़े। वो लोग ज़यीफ़ होते हैं, बड़े होते हैं, बुजुर्ग हैं, ज़यीफ़ हैं, अपने कामों को खुद अंजाम नहीं दे पाते हैं। हमारा फ़र्ज बनता है ख़ास तौर पर पोतों का, नवासों का जो घर में होते हैं, नवासियाँ जो होती हैं या पोतियाँ जो होती हैं, या उनका फ़र्ज बनता है कि अपने दादा अबू, अपने दादा अम्मी, घर में बड़े मौजूद नाना नानी या जो भी बुजुर्ग हैं, उनका ख़ास ख़ास ख्याल रखें और उसके बदले उनसे ढेर सारी दुआएँ लें, उनसे ढेर सारी दुआएँ लें। और हमेशा हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी वो आपको आवाज़ दे, पहली आवाज़ पर आप वहाँ हाजिर होकर उनकी मदद करें, ठीक है ना, ताकि आपका नतीजा कहीं ऐसा गलगली जैसा ना हो जाए। ठीक दोस्तों, इन चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए, उनका ख़ास एहतराम होता है, उनकी इज्जत में हमें कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ कभी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना गलगली। और तुम जब जाओगे ना दादा अबू के पास, तो मेरी तरफ से भी उनकी तबीयत तुम पूछना, ठीक है, और मैं तुम्हें कुछ फल दूंगी, वो भी लेकर जाना, ताकि तुम्हारे अबू खाकर, दादा अबू खाकर एनर्जी हासिल कर सके और वो बिल्कुल वो तवानाई वापस हासिल कर सके। दोस्तों मैं खिलखिली को तैयार करती हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, आप लोग देखिए एक हिस्सा, ठीक है ना। आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलूँ और तुम देखो फल भी लेकर जाना और टाइम पर पहुँचना।
प्यारे बच्चों, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत प्यारी प्यारी सी ड्राइंग्स। हमेशा की तरह आज भी हम आपको एक खूबसूरत सी ड्राइंग बनाना सिखाएंगे और इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करते हुए आखिर किस तरह से इस ड्राइंग में रंग भरा जाए। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार है ना, तो आइए मिलकर देखते हैं कि आज की ये ड्राइंग किस तरह से बनाई जाएगी और फिर किस तरह से इसमें प्यारे प्यारे से रंग भरे जाएंगे।
सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और पहुंच चुके हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। हम इस हिस्से में गलगली हमारा साथ नहीं देंगे क्योंकि गलगली गए हैं हॉस्पिटल अपने दादा अबू की इयादत के लिए और उनके हाल चाल पूछने के लिए। गलगली को यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हुआ, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो फौरन अपनी गलती को मान लेता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को कभी मानने को तैयार नहीं होते। गलगली से मेरी बात जब फोन पर हुई तो वो बता रहे थे कि खैर खतरा जो है वो बिल्कुल टल चुका है और उनके दादा अबू को ज्यादा खतरा नहीं है। वक्त पर दवाई ना खाने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया था, जिस वजह से उन्हें चक्कर वक्कर ऐसी हालत थी, सर में शदीद दर्द था, इसी वजह से फौरन उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। खैर प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अक्सर ये होता है कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो उस वक्त हमें बहुत सारे ज़रूरी काम याद आ जाते हैं। भाई फलाना ड्रामा सीरियल शुरू हो चुका है, हमें ये काम करना है, हमें होमवर्क करना है, हमें खेलने जाना है, हमें बाहर जाना है, हमें ये खरीदना है, हमें वो खाना है, ये सारी चीज़ें हमें याद आती हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो मौका, वो लम्हा जो वो हमसे गुफ्तगू करना चाहते हैं हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, एक नेमत है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जब हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, अपनी नौजवानी अपनी जवानी की कहानियाँ हमें सुनाते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैं स्कूल में ये करता था, मैंने इस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, तो उस वक्त ये वो अनमोल मोती होते हैं जो उनके मुँह से निकल रहे होते, जिन्हें अगर हम समझ जाएँ, जिन्हें अगर हम उन पर अमल करना शुरू करें तो हमारी ज़िंदगी भी संवर सकती है। बात यह है कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके पास एक अच्छा खासा तजुर्बा होता है, ठीक है। शायद हम कहते होंगे कि ठीक है, इस ज़माने और उस ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इस ज़माने और उस ज़माने में भाई बहुत ज़्यादा, मिसाल आज टेक्नोलॉजी है तो उस वक्त नहीं थी सारी चीज़, नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे ज़िंदगी के मामले होते हैं, बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जिनसे हम सबक हासिल कर सकते हैं, उनसे यानी उनकी ज़िंदगी से हम सबक हासिल कर सकते हैं, तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। तो आप इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल जाने मत दें। दूसरी बात, उनका वो शफ़क़त भरा हाथ जो हमारे सर पर फेरते हैं, वो मोहब्बत जो हमारे लिए देते हैं, वो मोहब्बत जो हमें अपने गले लगाते हैं, पता है वो जो लम्हा होता है, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कितना पुरसकून लम्हा होता है जब आपके घर में मौजूद एक बुजुर्ग शख्सियत आपके सर के ऊपर हाथ फेरती है, आपको ढेर सारी दुआएं देती है। वो एक अनमोल मौका होता है, एक अनमोल लम्हा होता है जो ज़िंदगी में शायद कभी पलट के वापस ना आए, ठीक। उस मौके हो सके फायदा उठाएं, जितना हो सके उनकी मदद करें, जितना हो सके आप उनसे बातचीत कर ठीक है, आप उनसे दुआएं लेने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे बड़े बुजुर्ग घर में मौजूद होते हैं, दादा अबू, दादा अम्मी, नाना अबू, नाना अम्मी, इनकी दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह में कभी भी रद्द नहीं होती और वो हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने नवासा नवासी और जो पोते पोतियाँ होते हैं उनके हक में हमेशा बेहतरीन उनकी दुआएं करते हैं, ठीक। तो ऐसे मौके को बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिए। जिस्मानी तौर पर वो बिल्कुल ज़यीफ हो चुके हैं, देखिए जब हम नौजाद होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं बिल्कुल छोटे से, अपने काम तो हम खुद नहीं कर पाते, हमें संभालने के लिए ऐसी शख्सियात होती हैं, हमारी अम्मी, हमारे अब्बू, सब हमारी नानी ज़यीफ़ नहीं हुई होती हैं, नाना हमारे ज़यीफ़ हैं तो वो भी हम उनकी मदद करते हैं, ठीक है ना। अब जब वो ज़यीफ़ हो चुके हैं, अब जब उनकी जिस्मानी हालत ऐसी नहीं है, वो ताकत वो तवानाई उनमें मौजूद नहीं है, तो ये हमारा नौजवानों का, बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि उनके हाथ को थाम कर उनकी मदद करें। उन्हें दवाई चाहिए, हम उन्हें वक्त पर दें, उन्हें टहलने जाना है तो उनके हाथ लाठी की जगह हम उनकी लाठी बने, हम उनका सहारा बने और उनके हाथ को कर हम उन्हें घुमाने ले जाएं, टहलने ले जाएं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करें, उन्हें कुछ देखना है, उन्हें कुछ चाहिए है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम हमेशा वहाँ उनके किनारे पर मौजूद रहें, ठीक है ना। आपको पता है कितना सवाब का काम है, आपको पता है अल्लाह ताला ऐसे लोगों से कितना खुश रहता है, उन्हें कितना चाहता है, आप जानते हैं ना। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है दोस्तों, नेक दुआओं में याद रखना, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे, फिलहाल खुदा हाफिज़।